कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा। श्रोताओं, इससे पहले कि आज का अध्ययन हम शुरू करें, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं अपने सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि हम इन दिनों दूसरे शमूएल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दाऊद अपने साथियों के साथ युद्ध क्षेत्र से लौट गया और पलिश्तियों ने विशाल सेना के साथ इसराइलियों पर आक्रमण किया। युद्ध में इसराइल की पराजय हुई और शाऊल तथा उसके चारों पुत्र युद्ध में मारे गए और यह सुनकर दाऊद ने बहुत विलाप किया और जिस अमालेकी ने शाऊल की अंतिम सांसें उखाड़ी थी उसे भी मृत्यु दंड दिया गया, क्योंकि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, अर्थात राजा था। और तब दाऊद ने यहूदा का राजकाज संभाला और हेब्रोन में वास की, जबकि शाऊल के सेनापति अबनेर ने शाऊल के अंतिम पुत्र ईशबोशेत को अन्य 11 गोत्रों पर राजा बनाया। परिणाम स्वरूप दाऊद और अबनेर के सेनाओं में अंतिम युद्ध हुआ और अबनेर की सेना हार गई। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें समझाते और सिखाते हैं। पिताजी, आज जब हम आपके वचन में से फिर से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते और सीखते हैं समझ सकें, अपने जीवन में उसे उतार सकें और होने दे कि हमारा विश्वास भी दाऊद की तरह आप पर होने पाए। हम विनती करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं और किसी न किसी रीति से तनाव में हैं, आर्थिक तंगी में हैं। प्रभु जी आप उन सब की सहायता कीजिए। आज के अध्ययन में हम आपके आशीष मांगते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और दूसरे शामिल की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बाद अर्थात शाऊल और योनातान की मृत्यु तथा शोक के समय के बाद, अब क्योंकि शाऊल नहीं रहा, दाऊद जानना चाहता था कि वह क्या करे। उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? उसने यह प्रश्न क्यों किया? क्योंकि वह पलिश्तियों के देश में था और शाऊल के मरणोपरांत उसे ही राजा बनना था। उसने परमेश्वर के निर्देशों की प्रतीक्षा की और दाऊद सीख चुका था कि उसे हर एक काम में परमेश्वर की इच्छा जानकर ही आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने उससे कहा कि वह हेब्रोन में जाकर रहे। परमेश्वर उसे सावधानी से चलने का निर्देश दे रहा था। उसे अपनी इच्छा से जाकर इसराइल का राज्य हाथ में नहीं लेना था, परंतु देश में प्रवेश करके स्वयं को जनता के लिए उपलब्ध करवाना था। हम दूसरा शामिल 2 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, तब दाऊद इज़रेली अहिनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगेल नाम अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपनी दोनों पत्नियों के साथ हेब्रोन गया। आप पूछेंगे, क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को अच्छा मानता है जिसकी 2 पत्नियां हों? जी नहीं, इसके कारण उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, वह और भी विवाह करेगा। दूसरा शमूएल 2 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, और दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद के निष्ठावान अनुयायी भी परिवारों के साथ हेब्रोन के नगरों में बस गए। तब दूसरा शमूएल 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। मित्रों यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि दाऊद उपलब्ध था, उसके गोत्र के लोग उसे राजा बनाने के लिए आए और वह यहूदा का राजा बनाया गया। दूसरा शमूएल 2 अध्याय के 5 पद में लिखा है, और दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं। तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के सब लोगों के पास यह कहला भेजा कि यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी है। मित्रों ध्यान दीजिए, दाऊद का यह काम बुद्धिमानी का था। शाऊल का अंतिम संस्कार करने वाले उसके निष्ठावान थे और दाऊद ने उन्हें इस काम के लिए आभार व्यक्त किया। परमेश्वर के अभिषेक के लिए दाऊद के मन में अपार श्रद्धा थी। उसे 2 अवसर मिले थे कि वह शाऊल का वध करके स्वयं राजा बन जाए, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। मित्रों हम देखते हैं कि दाऊद के सद्गुणों को अनदेखा किया जाता है, क्योंकि उसका पाप उसे धूमिल कर देता है। वह एक बादल की नाई था जो उसके जीवन में सूर्य प्रकाश को ढांक देता था। दाऊद अनेक परिप्रेक्ष्यों में एक अद्भुत व्यक्ति था। उत्तर काल में उसने अपने महापाप का परिणाम दैनिक जीवन में भोगा। हम देखते हैं कि दाऊद ने गिलाद वाले याबेश के निवासियों की प्रशंसा की। दूसरा शमूएल 2 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, इसलिए अब यहोवा तुझसे कृपा और सच्चाई का वर्ताव करे और मैं भी तुम्हारे इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। और अब हिया बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। मेरे प्रियो, दाऊद ने उनसे पूछा कि क्या वे उसे वैसा ही सहयोग एवं समर्पण प्रदान करेंगे जैसा उन्होंने शाऊल को दिया था। दाऊद कूटनीति और सराहनीय नीति अपनाता है। हमें इस तथ्य से अवगत होना है कि शाऊल और योनातन दोनों के एक एक पुत्र जीवित थे और उनमें से एक का सिंहासन पर दावा करना स्वाभाविक था। यदि परमेश्वर हस्तक्षेप न करता, अबनेर ने तो समय नहीं गंवाया और ईशबोशेत को राजा घोषित कर दिया। दूसरा शामिल दो अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु नेर का पुत्र अबनेर जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र ईशबोशेत को संग ले पार चला गया और महने में पहुंचाया और उसे गिलाद, अश्शूरियों के देश इज़राइल, एप्रेम, विन्यामीन वरन समस्त इसराइल के देश पर राजा नियुक्त किया। मेरे मित्रों ध्यान दीजिए, इसराइल के विभाजन का आरंभ तो यहीं से हो गया था जो सुलेमान के राज्य के बाद यरोबाम के विद्रोह से प्रकट हुआ। दाऊद पहले तो यहूदा का राजा बना, परंतु उत्तरी गोत्र ने ईशबोशेत शाऊल के पुत्र को अपना राजा बनाया। हम आगे पढ़ते हैं दूसरा शामुएल 2:10-11 पद में, शाऊल का पुत्र ईशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा, परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा और दाऊद के हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह गृह युद्ध का अंतराल था। उत्तरी राज्य और दाऊद के दक्षिणी राज्य यहूदा में युद्ध के कारण राष्ट्र, संसाधनों और स्रोतों का नाश हुआ। यह वास्तव में एक त्रासदी ही था। हम दूसरा शमूएल 2:12-13 पद में पढ़ते हैं, और नेर का पुत्र अबनेर और शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के जन महनेम से गिबोन को आए, तब सरुयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले और दोनों दल उस पोखरे की एक एक ओर बैठ गए। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अबनेर और योआब गृह युद्ध समाप्त करने का समाधान खोज रहे थे, परंतु जैसा आप जानते हैं कि जब एक पार्टी अपने विचारों में दृढ़ संकल्प ले लेता है तो दूसरी अपने विचारों में, तो वार्ता निष्फल ही होती है, प्रयास व्यर्थ होता है, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। हम दूसरा शमूएल 2:14-16 पद में पढ़ते हैं, तब अबनेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेलें। योआब ने कहा, वे उठें। तब वे उठे और विन्यामीन अर्थात शाऊल के पुत्र ईशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन गिनकर निकले और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले, और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी अपनी तलवार एक दूसरे की पांजर में घोंप दी और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्क थसुरीम पड़ा, वह गिबोन में है। मित्रों, क्या यह अद्भुत बात है? अबनेर ने कहा कि योद्धा युद्ध करके देख लें। इस बात पर योआब भी सहमत हो गया और वे समाधान खोज रहे थे। दूसरा शमूएल 2:17 पद में हम पढ़ते हैं, और उस दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ और अबनेर और इसराइल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। यहाँ पर देखिए, दाऊद अनेक युद्धों का एक अनुभवी सैनिक था और हमारी भेंट आरंभ से ही निर्बोध चरवाहे के रूप में उससे हुई है। अब यह दाऊद वह नहीं था, उसने गुफाओं में जीवन बिताया और अब उसने योद्धाओं का दल तैयार कर लिया था। वह युद्ध में दक्ष था, अतः उसके योद्धाओं ने अबनेर की बड़ी संख्या की सेना को हरा दिया था। मेरे मित्रों, अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। असहेल ने अबनेर का पीछा किया। असहेल योआब का भाई था, योआब दाऊद का सेनापति था और अबनेर शाऊल का सेनापति रह चुका था। हम दूसरा शमूएल 2:18 पद में पढ़ते हैं, वहां तो योआब, अबीश और असहेल नाम सरुयाह के तीनों पुत्र थे, और असहेल बनेले चिकारे के समान बेग दौड़ने वाला था। ध्यान दें, सरुयाह दाऊद की बहन थी, उसके 3 नामी पुत्र थे। शमूएल 2:19 पद में हम पढ़ते हैं, तब असहेल अबनेर का पीछा करने लगा और इसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न ही बाईं ओर। असहेल ने अबनेर का पीछा किया, परंतु वह अबनेर के जोड़ का नहीं था। अबनेर ने उसे चेतावनी दी, परंतु वह नहीं माना। दूसरा शमूएल 2:20-23 पद में हम पढ़ते हैं, अबनेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही। अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिने चाहे बाईं ओर मुड़ जा, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अब्नेर ने असहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई युवाब का अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तो भी उसने हट जाने को नकारा। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। और जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे। मेरे मित्रों, अब्नेर ने उसे चेतावनी दी कि रुक जाए, परंतु असहेल नहीं रुका। अतः अब्नेर ने अपना भाला उसे मारा और वह मर गया। अब्नेर ने योआब के भाई को मारा। अतः योआब के मन में बदले की भावना धर कर गई और वह बदला लेकर ही रहेगा, जैसा हम आगे देखेंगे। दूसरा शामिल 2 अध्याय उसके 32 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उन्होंने असहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बेतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर फटते ही हेब्रोन में पहुंचा। मेरे मित्रों, असहेल के दफन के साथ ही इस अध्याय का भी अंत होता है। दफन के बाद योआब और उसके साथी रातों रात चलकर दिन तड़के हेब्रोन को पहुंचते हैं। उन्होंने दाऊद को पूरा समाचार जाकर सुनाया। तब हम आगे देखते हैं, गृह युद्ध अभी भी चल रहा है। अध्याय 3 में दीर्घकालीन गृह युद्ध का ही उल्लेख है, जिसके कारण राष्ट्र दुर्बल हो गया था। दाऊद शनै शनै अर्थात धीरे धीरे सामर्थी होता गया। अब्नेर इशबोशेत से संबंध विच्छेद कर दाऊद के साथ आ गया और दाऊद के सेनापति योआब ने अब्नेर पर संदेह करके उससे अपने भाई असहेल की हत्या का बदला लिया और उसकी हत्या कर दी। हम दूसरा शामिल उसके 3 अध्याय के 1 पद में पढ़ते हैं, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। मेरे मित्रों, इसराइल में आंतरिक अव्यवस्था थी, गृह युद्ध हो रहा था और राष्ट्र के स्रोतों एवं संसाधनों का ह्रास हो रहा था। दाऊद 7.5 वर्ष तक हेब्रोन में रहा। हम दूसरा शामिल 3 अध्याय उसके 2-5 पद में पढ़ते हैं, और हेब्रोन में दाऊद के पुत्र उत्पन्न हुए। उसका जेठा बेटा अमनोन था, जो इसराइली अहिनोम से उत्पन्न हुआ था, और उसका दूसरा किलाब था, जिसकी माँ कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगेल थी। तीसरा अबशालोम, जो गशूर के राजा तलमई की बेटी माका से उत्पन्न हुआ था। चौथा अदोनियाह, जो हगीत से उत्पन्न हुआ था। पांचवा सपत्याह, जिसकी माँ अबीतल थी। छठवां इत्राम, जो इगला नाम दाऊद की स्त्री से उत्पन्न हुआ। हेब्रोन में दाऊद से ये ही संतान उत्पन्न हुए। मेरे मित्रों, दाऊद के पास अब 2 से अधिक पत्नियां थीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दाऊद को इनके कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर इसे मान्यता नहीं देता है और दाऊद इससे बच भी नहीं सकता है। दाऊद के पुत्रों में अबशालोम भी था। आप उसकी कहानी तो जानते ही होंगे। वह दाऊद से विद्रोह करेगा। दाऊद उसे राजा बनाना चाहता है, परंतु वह युद्ध में योआब के हाथों मारा गया। दाऊद को उसकी मृत्यु का बहुत दुख हुआ। उसकी माता कौन थी? पहला शमूएल 27 अध्याय उसके 8 पद में आप पढ़ेंगे कि दाऊद ने गमूरियों, गिरजियों और अमालेकियों को सर्वनाश किया था। उसने गशूर के राजा तलमे को घात किया और उसकी पुत्री माका को ले लिया। अबशालोम इसी माका का पुत्र था। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने दाऊद को पाप करके बचने नहीं दिया। इसे ध्यान में रखना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हम आगे देखते हैं कि अब्नेर दाऊद के साथ हो जाता है। मित्रों, इस अध्याय में लंबे गृह युद्ध का वर्णन है, जो हम में रुचि उत्पन्न नहीं करता है। अब्नेर शाऊल का सेनापति था। उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को राजा बनाया था। वह उच्च पदाधिकारी, एक वरिष्ठ अगुआ था। अतः वह उस युवा राजा की बात नहीं मानता था। उसने वह काम किया जो उसको शोभा नहीं देता है। हम दूसरा शामिल 3 अध्याय उसके 7-8 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, शाऊल की एक रखेली थी जिसका नाम रिस्पा था। वह अया की बेटी थी और इशबोशेत ने अब्नेर से पूछा, तू मेरे पिता की रखेली के पास क्यों गया? इशबोशेत की बातों के कारण अब्नेर अति क्रोधित होकर कहने लगा, क्या मैं यहूदा के कुत्ते का सिर हूँ? आज तक मैं तेरे पिता शाऊल के घराने और उसके भाइयों और मित्रों को प्रीति दिखाता आया हूँ और तुझे दाऊद के हाथ पड़ने नहीं दिया, फिर तू अब मुझ पर उस स्त्री के विषय में दोष लगाता है। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि मृतक राजा की रखेली को ले लेना सिंहासन के उत्तराधिकारी का अधिकार था। अब्नेर ने इशबोशेत के अधिकार पर हाथ डाला और शाऊल की रखेल रिस्पा को अपना लिया। इस पर इशबोशेत ने उसे झिड़का तो वह क्रोधित होकर दाऊद के साथ हो गया, जबकि इशबोशेत का उसे झिड़कना उचित ही था। हम दूसरा शमूएल 3 अध्याय उसके 9 से 11 पद में पढ़ते हैं, यदि मैं दाऊद के साथ ईश्वर की शपथ के अनुसार वर्ताव न करूं तो परमेश्वर अब्नेर से वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे, अर्थात मैं राज्य को शाऊल के घराने से छीनूंगा और दाऊद की राजगद्दी दान से लेकर बेर्शेबा तक इसराइल और यहूदा के ऊपर स्थिर करूंगा। और वह अब्नेर को कोई उत्तर न दे सका, इसलिए कि वह उससे डरता था। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में अब्नेर ने शाऊल के घराने का त्याग और दाऊद से समझौते की घोषणा कर दी। अब वह दाऊद को 12 गोत्रों का राजा बनाने में सहायता करेगा। इशबोशेत अब्नेर को कुछ नहीं कह पाया। वह शाऊल का पुत्र अवश्य था, परंतु न तो उसके पास सेना थी और न ही उसे युद्ध प्रशिक्षण था। वह अपने भाई योनातान की नाई एक योद्धा नहीं था। वह राजमहल में बड़ा हुआ था और अब्नेर से डरता था। दूसरा शमूएल 3 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, तब अब्नेर ने उसके नाम से दाऊद के पास दूतों से कहला भेजा कि देश किसका है, और यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा बांध और मैं तेरी सहायता करूंगा कि समस्त इसराइल के मन तेरी ओर फेर दूं। तब दाऊद ने कहा, भला मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूँ कि जब तू मुझसे भेंट करने आए तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए तो मुझसे भेंट न होगी। मित्रों, ध्यान दीजिए, दाऊद ने उससे कहा कि वह उसे तब ही स्वीकार करेगा जब वह शाऊल के पुत्र मीकल को साथ लाएगा। आपको स्मरण होगा कि मीकल दाऊद की पहली पत्नी थी, परंतु शाऊल ने उसका विवाह किसी और से करवा दिया था। आप मेरी बात पर विश्वास करें, दाऊद का जीवन दुविधा में था और यही कारण था कि उसने अनेक कष्ट उठाए। उसने अपने जीवन में पाप को आने दिया था, परंतु सबसे बढ़कर उसे परमेश्वर में विश्वास था। वह सबसे अधिक परमेश्वर के साथ संबंध बनाना चाहता था, अर्थात संबंध रखना चाहता था। मित्रों, हम दूसरा शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतियेल के पास से छीन लिया और उसका पति उसके साथ चला और बहुरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वह लौट गया। मेरे मित्रों, दाऊद ने अब्नेर की संधिवार्ता स्वीकार की। अब हम देखेंगे कि अब्नेर के विश्वासघात के कारण दाऊद 12 गोत्रों पर राजा बना। यहाँ पर देखते हैं युआब द्वारा अब्नेर की हत्या। युआब नहीं भूला था कि अब्नेर उसके भाई का हत्यारा था। दूसरा शमूएल 3 अध्याय उसके 27 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया तब युआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटा के भीतर अलग ले लिया और वहां अपने भाई असहेल के खून के पलटे में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। मेरे मित्रों, युआब ने अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया। जब दाऊद ने सुना कि युआब ने अब्नेर की हत्या कर दी है, तब उसने इसका काम को भी कभी उचित नहीं माना। सच तो यह है कि उसने युआब को इस भयंकर काम का दोषी भी ठहराया। अब्नेर की मृत्यु के बारे में उसने एक बड़ी रोचक बात कही। दूसरा शमूएल 3 अध्याय उसके 33 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया कि क्या उचित था कि अब्नेर मुड़ की नाई मरे। मेरे मित्रों, दाऊद ने ऐसा क्यों कहा? यह वास्तव में बड़ी विचित्र श्रद्धांजलि है। अब्नेर हेब्रोन में था और जहां हत्यारा सुरक्षित रहता था। योआब उसे वहां छू भी नहीं पाता, परंतु योआब उसे फुसलाकर वहां से बाहर लाया और कहने लगा कि तू भी एक सेना का सेनापति है और मैं भी एक सेना का सेनापति हूँ, यदि हम एक हो जाएं तो कैसा रहेगा। अतः अब्नेर शरण नगर से बाहर आ गया और योआब ने उसे मार दिया। यही कारण था कि दाऊद ने कहा, क्या उचित था कि अब्नेर मूर्ख के समान मरे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हेब्रोन को छोड़कर उसने मूर्खता ही की थी। यदि वह उसे नहीं छोड़ता तो निश्चय वह न मारा जाता। जो भी हो, क्या यह हमारे लिए एक उत्तम शिक्षा नहीं है? प्रत्येक पापी की शरण मसीह में है, चाहे वह कैसा भी बुद्धिमान हो या कैसा बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो। यदि वह शरण से बाहर है तो वह भ्रष्ट ही होगा। यदि आज दफन के समय सच्चाई कही जाए तो प्रचारक मृतकों के बारे में कहेंगे, क्या उचित है कि यह मूर्ख के समान मरे। वह प्रभु यीशु मसीह शरणागत से दूर रहा। क्या आप मसीह के शरणागत हैं? मेरे मित्रों, आज मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे कई अवसर आते हैं कि हम मसीह के शरण में रहें, परंतु हम उससे और उसके वचन से, उसकी आज्ञाओं से हट जाते हैं, जिसके कारण हम पाप में गिर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे यही कहता है कि हम परमेश्वर के शरण में आ जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ मेरे श्रोता मित्रों, परमेश्वर आपको शांति आनंद देना चाहता है। यदि आप उसके पास आएंगे तो वह आपको देगा। क्यों ना आप उसके शरण में आ जाएं और उस महान शांति को प्राप्त करें जिसके लिए आप प्रतिदिन तड़प रहे हैं। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप अवश्य ही एक सही निर्णय लेंगे। परमेश्वर आपको एक सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करे। प्रभु आप सबके साथ हो।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली।